ते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
हरे राम
हरे राम पहले मैं गिरिवरधारी प्रभु का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आदेश दिया कि यहाँ पर आके मैं कुछ दो शब्द कहूँ। और हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ भक्त बैठे हैं, इस ग्रेस ओमकार प्रभु जो हमसे सबसे सीनियर हैं, जदुरानी माता जी, आबिर कन्या माता जी, जय केशव प्रभु, दिनेश्वर प्रभु, चैतन्य चारू प्रभु, ये सब मेरे वरिष्ठ भाई है। तो इनके सामने कुछ कहने की क्षमता है, योग्यता तो नहीं है, पर आदेश है उसका पालन करना है। तो आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। इसके पहले कि हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से कुछ सीखने का प्रयास करें, और विशेष स्वागत करना चाहते हैं हमारे कुछ खास फ्रेंड का जो आज आए हैं, राहुल प्रभु और उनके दो रतन जो है वो हमारे बीच आए हैं। आई थिंक शीला माता जी की मम्मी है, सासू माँ, अच्छा अच्छा वो भी आ जाए, आपका भी स्वागत है। सभी भक्तों से निवेदन करता कि अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट मोड पर रख दें तो अच्छा रहेगा। तो आज हम भगवत गीता यथारूप के अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 27 इस पर चर्चा करेंगे। पर कुछ भी कहने के पहले मैं अपने आप को ये हमेशा याद दिलाना चाहता हूँ और हम सभी के लिए कि हम जब भी कभी इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मूड क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर मूड व्हेन वी कम टू दिस काइंड ऑफ ए प्रोग्राम। सो इट इज सेड दैट आवर मूड शुड बी दैट ऑफ ए पेशेंट हु गोज टू द हॉस्पिटल एंड नॉट ऑफ दैट ऑफ ए टूरिस्ट हु गोज टू द होटल। मतलब एक मरीज जो है जो अस्पताल में जाता है वो किस तरह की भावना लेके जाता है, उस तरह की भावना लेके हमें भक्तों के संग में आना चाहिए, सत्संग कार्यक्रम में आना चाहिए, और ना कि उस तरह के व्यक्ति का जो होटल में जाता है आनंद के लिए या उपभोग के लिए। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जो मरीज होता है वह अस्पताल इसलिए जाता है क्योंकि वो जानता है कि मुझे कोई ना कोई बीमारी है, उसे ठीक करना है, ही इज़ वेरी डेस्परेट। बट ए पर्सन हु गोज टू द होटल, जो होटल जाता है वो सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कुछ पैसे खर्च करूंगा और कुछ आनंद का उपभोग करूंगा, कुछ आनंद की प्राप्ति करूंगा, और इस विचार से वो जाता है। तो हम जब आते हैं तो हालांकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम, ये जो हमारा जो प्रोसेस है ये पूरा सिर्फ हंसी मजाक का ही है, मतलब आराम से इसमें सुख ही सुख है, कोई भक्त दुखी होकर भक्ति नहीं करता। हालांकि दुखी होकर आते हैं, दुखी होते हैं इसीलिए आते हैं, जैसे कुछ श्लोक के पहले ही हमने चर्चा की थी कि चार प्रकार के जो लोग होते हैं जो भगवान के पास आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो इस तरह के हैं। लेकिन आजकल जो है ज्ञानी लोग तो है ही नहीं ज़्यादा, जिज्ञासु भी बहुत कम है, अर्थार्थी लोग हैं लेकिन वो भगवान के पास कम जाते हैं और लक्ष्मी जी के पास ज़्यादा जाते हैं, नारायण के पास कम जाने का सोचते हैं, वो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं नारायण के बिना। तो जो लोग भी भगवान के शरण में आते हैं ज्यादातर के आर्त लोग हैं, जो बहुत दुखी है, तो आर्तो आर्तो और आर्तो नार्तो, इतने सारे जो लोग हैं सब दुखी होकर आते हैं। लेकिन ये जो है ये सुसुखम, जैसे भी मैं आया अंदर घुसा तो बड़ा घमासान कीर्तन चल रहा था, कस्तूरधारी प्रभु बहुत जबरदस्त कीर्तन कर रहे थे, तो बहुत हम खुशी से नाच रहे थे, तो आनंद आता है क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, तो प्रभुपाद ने कहा कि चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, बस यही हमारा प्रोसेस है। बीच में मतलब यही करने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस लोगों को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत समझाने के लिए बीच में हम लोग कुछ फिलोसफी बोलते हैं। तो हमारा प्रोसेस यही है बस, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग। लेकिन ये लोगों को समझ, क्योंकि क्या होता है कि सरल भाव से अगर किसी को कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं तो लोगों के खोपड़ी में वो घुसती नहीं है, बुद्धि में जाती नहीं है, क्योंकि सरलता का पूरी तरह से विनाश हो गया है। तो किसी को भी कोई सरल बात बताने के लिए भी बहुत कॉम्प्लेक्स वे में बताना पड़ता है, तो बोलता है अरे इसने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत कॉम्प्लेक्स वे में बताया। वो तो सरलता आके कोई बेचारा बोल के जाएगा तो लगेगा नहीं मजा नहीं आया, कुछ और बोलो। जैसे कभी बात आ गई तो मैं बोल देता हूँ, एक राजा था जिसको अलग अलग श्लोक सुनने की बड़ी इच्छा होती थी, और उसका एक मंत्री था जो उसको श्लोक सुनाता था उसका अर्थ बताता था, तो एक बार उसने कहा शुक्लाम भरतम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याय सर्व विघ्न प्रशांति। बहुत लंबा मैं नहीं बोलूंगा, शॉर्टकट में आप अगर बताएं तो बोला इसका मतलब क्या है। बोला ये श्लोक चर्चा करता है महाविष्णु के बारे में और ये कहता है कि महाविष्णु जो है चतुर्भुज है वो, और उनको अगर हम पूजा करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी सारी जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। तो बोला यार मजा नहीं आया। मजा नहीं आया मतलब क्या? बोला दूसरा कोई मतलब बताओ। तो बोला ये श्लोक है इसका ये मतलब है, दूसरा मतलब कहाँ से बताऊं? तो उधर एक दूसरा मंत्री था जो बड़ा ही द्वेषी था, जैसे आज हमारा जो पूरा टॉपिक है ये इसी के ऊपर घूमेगा जो हम बात करेंगे। तुरंत उसने पकड़ लिया और बोला राजा ये जो श्लोक है नो ये चर्चा महाविष्णु के बारे में नहीं करता है, ये चर्चा करता है 1 रुपए के सिक्के के बारे में। तो राजा बड़ा खुश हो गया, 1 रुपए के सिक्के के बारे में जरा विस्तार से बताओ। तो बोला देखो शुक्लाम भरद्रम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, के शुक्लाम मतलब सफेद, 1 रुपए का जो सिक्का होता है चांदी का वो कैसा होता है? सफेद होता है। और चतुर्भुजम मतलब उसकी 4 भुजाएं हैं। कौन कौन सी 4 भुजाएं हैं? 4-4 आने को मिला लो तो 1 रुपया बन जाता है। और प्रसन्न वदनम ध्याय, हम लोग खुश हो जाते हैं कैसे? जब सैलरी क्रेडिट होता है, बैंक में पैसा आता है, वो हरी और लाल नोट देख के बड़े खुश हो जाते हैं। प्रसन्न वदनम ध्याय सर्व विघ्नो प्रशांत है, सोचता है पैसा मिल गया तो सारे विघ्न खत्म हो गए। तो राजा बोलता है अरे बहुत अच्छा मतलब बताया, तेरे को नौकरी पे रखता हूँ और इसको बिना नोटिस के निकाल देता हूँ। तो बेचारा दुखी हो गया, घर गया, उसका बेटा बोला क्या हो गया पापा? तो बोला ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है मैं जाऊँगा और तुमको वापस से तुम्हारी नौकरी दिलाऊंगा। तो जाके राजा से बोला कि ये जो श्लोक है ये चर्चा करता है महाविष्णु के बारे में भी नहीं और 1 रुपए के सिक्के के बारे में भी नहीं, ये करता है दही वड़े के बारे में। तो राजा खुश हो गया, अरे यार दही वड़ा? तो बोलता शुक्लाम भरद्रम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न पद्म ध्याय सर्व विघ्न प्रशांत, ये श्लोक था ना? राजा बोलता बिल्कुल। तो बोलता है देखो मैंने बताया था तुमको शुक्लाम मतलब क्या? सफेद। बोलता 1 रुपए का सिक्का लो और दही वड़ा लो, कौन सा ज्यादा सफेद है? राजा बोला दही वड़ा। बोला मैं बोला था शुक्लाम भरद्रम विष्णु शशि चतुर्भुजम। बोला चतुर्भुजम मतलब क्या? समाज की 4 भुजाएं हैं, कौन कौन सी? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण के पास पैसे नहीं है लेकिन क्षत्रिय के पास है, और शूद्र के पास नहीं है लेकिन वैश्य के पास है। लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी दही वड़े का आनंद उठा सकता है ना। और 1-2 दही वड़े की प्लेट खा लो फिर क्या है, हम क्या होते हैं? प्रसन्न वदनम ध्याय, हम बहुत खुश हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जब पेट भर जाता है तो बड़ी खुशी होती है, प्रसन्न हो जाते हैं। बोले बैंक में कितना भी रुपया है लेकिन जब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा, पापी पेट का सवाल है, तो खुश हो जाएंगे। और सर्व विघ्न प्रशांत, एक बार भूख मिट गई मतलब सब खत्म, बाद में सोचेंगे फिर क्या होगा। तो राजा बोला यार बहुत अच्छा बताया, तू आ जा इसको निकाल देता हूँ बिना नोटिस के। फिर उसको समझाया, बोला मूर्ख राजा ये जो चीज है श्लोक को समझने का तरीका ये नहीं है, श्लोक को समझने का तरीका है महाजनो ये ना गता सा पंथा, कि जो है वो श्लोकों को तो क्या तोड़ मरोड़ के कैसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो सिंपल यही उसका मीनिंग है कि ये महाविष्णु के बारे में चर्चा करता है, जिनकी 4 भुजाएं हैं उनको आप सेवा करो, प्रसन्न हो जाओगे, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह के जो सरलता का पूरा विनाश हो गया एक्चुअली। बहुत कॉम्प्लेक्स रूप में कोई समझाता है तो बोलता है हाँ अरे इसमें कुछ कहा है, इसमें कुछ वजन है, नहीं तो समझ में नहीं आता। तो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है, आओ भगवान बोलते आओ और बैठो सुनो, लेकिन ऐसा है कि उसमें भी हमको नींद आ जाती है और वो भी हमको सुनने को नहीं होता है। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं यार, सोया तो सोया, कम से कम इधर आके सोया, चलो ग्रैंड प्रॉब्लम नहीं है, घर पे नहीं सोया कम से कम, उतना तो तकलीफ उठाए। तो ऐसे कि भगवान की तरफ एक पैर लेके जाएंगे तो भगवान बहुत हमको देते हैं, और भगवान कहते आओ बैठो सुनो सुसुखम कर तुम, इतना आराम से करो जो है फुल्ली परफॉर्म। एनीवे तो लास्ट टाइम आई थिंक ओमकार प्रभु ने, आप थोड़ा आगे आगे आ जाइए, ओमकार प्रभु जी ने क्लास लिया था 26 वाले नंबर के श्लोक पे, और उसके पहले जय केशव प्रभु ने बहुत अच्छा ही बताया था मायावादियों के बारे में। तो अभी हम जो नेक्स्ट श्लोक ले रहे हैं वो है श्लोक क्रमांक 27। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने के बाद देखेंगे प्रभुपाद जी ने हमको क्या शिक्षा दी है इससे। तो आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन मंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परं तप इच्छा द्वेष समुत्थेन मंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परं तप इच्छा द्वेष समुत्थेन मंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परं तप
इच्छा देश समुत्थेन
द्वमोहेन भारत
सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परं तप
इच्छा द्वेष समुत्थेन बन्धमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परं तप
इच्छा द्वेष समुत्थेन
द्वमोहेन भारत
सर्वभूतानि सम्मोहम्
सर्गे यान्ति परं तप
इच्छा द्वेष समुत्थेन
मोहेन भारत
सर्वभूतानि सम्मोहम्
सर्गे
यान्ति परं तप
इच्छा देश समुत्थेन
भूतानि जीव सम्मोहम् मोह को सर्गे जन्म लेकर यान्ति जाते हैं प्राप्त होते हैं परंतप ये शत्रुओं के विजेता। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्लेषी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा, कृपया तात्पर्य दोहराइएगा। हे भरतवंशी,
हे
शत्रु विजेता,
समस्त जीव
जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों
से
मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य को पढ़ना चाहेगा हिंदी में।
जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से कदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख स्त्री पुरुष अच्छा बुरा आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते।
तो ये जो सातवां अध्याय है भगवत ज्ञान, हम करीबन अभी इसके कंक्लूजन पे है। तो इसमें भगवान पहले ही श्लोक में बताते हैं तत्सुणु, हे अर्जुन ध्यान से सुन। मैया सब का मना पार था जब भगवान कहते हैं, तो भगवान कहते हैं तत्सुणु के ध्यान से सुन। तो बहुत जरूरी है कि हमको भगवत गीता का जो मैसेज है उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। फिर भगवान इस आगे इस अध्याय में भगवान की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में उसका वर्णन करते हैं। फिर बताते हैं कि भगवान को शरणागत होना चाहिए और भगवान बताते हैं कि किस तरह के लोग हैं जो उनकी शरणागति में आते हैं और किस तरह के लोग हैं जो उनकी शरणागति में नहीं आते हैं, जो चार तरह के जो बताए हैं लोगों ने। दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रत्यज्ञान आक्षुरिम भाव माष्टिता। और बाद में आगे भगवान ने बताया कि वो लोग हैं जो उनको सरेंडर नहीं करते हैं वो कहाँ जाते हैं, डेमिगॉड वर्शिप करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मायावादी होते हैं, जो भगवान को मानते नहीं है और इस तरह से वो बिविल्डर हो जाते हैं। तो आज के जो श्लोक है उसके अंदर यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिसकी प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है। जैसे सबसे पहले इच्छा के बारे में बताया है, इच्छा मतलब डिजायर, कि हमारी क्या इच्छा है। द्वेष के बारे में बताया, द्वेष मतलब घृणा, एनवी, घृणा, हेट। फिर भगवान ने आगे द्वंद के बारे में कहा है कि ये जो डुअलिटी है, ये जो द्वंद है उसके बारे में भगवान आगे बता रहे हैं। फिर मोह के बारे में बताया, इल्यूजन, बिवेटरमेंट। और कहा है सर्वभूतानी, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली कुछ कुछ लोग बिविडर होते हैं और बाकी लोग बच जाते हैं, नहीं, सर्वभूतानी मतलब इट इज अप्लीकेबल टू एवरी वन, सबके लिए है ये। और भगवान इसमें अर्जुन को दो बार एड्रेस करते हैं, एक बार भारत कह के और एक बार परम तप कह के। तो उसके पीछे भी कारण है, हम देखेंगे आगे। तो एनीवे, सबसे पहले तो बताते हैं कि जो डिल्यूजन है, सम्मोह, तो ये क्यों होता है। ये होता है क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं, ये जो द्वंद है इच्छा और घृणा इसके कारण। तो बताते हैं कि मनुष्य या कोई भी जीवात्मा जो है उसकी चार इनहेरेंट क्वालिटी होती है जो उसके पास रहती है, भ्रम, प्रमाद, विप्रकर्णापटव और विप्रलप्स। ये चार चीजें कि हम क्या करते हैं, हमारे सेंसेस आर इनपरफेक्ट, हमारे जो इंद्रिय है वो पूर्ण नहीं है, भ्रम, प्रमाद एंड वी गेट इल्यूजन, हम जो है वो भ्रम में पड़ जाते हैं और हम गलतियां करते हैं और उस गलती को कवर करने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि हम उसमें तो ये चार जो है ये डिफेक्ट है हमारे, और इस चार डिफेक्ट की वजह से ये सारी चीज होती है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है, जो प्योर नॉलेज के बारे में बताते हैं। तो जीव जो है उस जीव की स्थिति क्या है, और सबसे पहले जीव का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या है। हमने कई बार ये सुना है, हर कक्षा में सुनते हैं, और भगवान सबसे पहले यही बात बताते हैं दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। आप ये शरीर नहीं हो, आप ये आत्मा हो। तो जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जीवर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम लोग क्या है, सोल है। तो ये सबसे पहले हमको पता लगाना है। जब हम ये चीज पता लगाएंगे तो हो सकता है कि शायद बिल्डरमेंट से ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यही पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार प्रभुपाद जी जब इनिशियली जब लेक्चर देते थे तो यही बात दोहराते थे बार बार। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी बार बार क्यों ये कह रहे हो कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल, कुछ और आगे कहो ना। कई बार हम बहुत आगे सुनना चाहते हैं। उस दिन भक्ति विकास महाराज बोल रहे थे कि भगवान की लीला सुनने की हमारी बड़ी इच्छा रहती है, पर सबसे पहले हमको मटेरियल नेचर के बारे में समझना पड़ता है। अगर वो नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल है, और आगे भगवान की लीला समझने में मात खा जाएंगे, जैसे ब्रह्मा जी मात खा गए थे। बहुत समझने गए भगवान को कि ये भगवान है, 10 हाथों में अचार लगा के खा रहा है उंगली के अंदर, ये भगवान हो सकता है क्या, दूसरे का झूठा खा रहा है। तो इसके लिए हमको समझना चाहिए कि भगवान कौन है, उनकी शक्तियाँ क्या है, उसका पूरा पूरा हमें ज्ञान होना चाहिए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी अगर आपको याद हो तो। लेकिन बताते हैं कि हम, तो उसने कहा प्रभुपाद जी को क्यों बार बार ये बता रहे हो, तो प्रभुपाद जी ने कहा हैव यू अंडरस्टूड दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, तो बोला नॉट एग्जैक्टली प्रभुपाद, बोला इसलिए बता रहा हूँ प्रभुपाद जी का, इसलिए बता रहा हूँ तुमको। नहीं तो क्या है कि कोई भी कोई आएगा, कोई मंत्र दे के जाएगा, मंत्र पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन जैसे एक तोते को भी हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जब आके उसका कोई गला मरोड़ेगा तो कहाँ 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 बोलेगा वो। तो इसलिए एक और उदाहरण है कि एक बार एक बहुत सारे कबूतर लोग गए बाबा के पास, वो बोले अरे बाबा हमको एक मंत्र दे दो। तो बाबा बोला ठीक है चलो तुमको एक मंत्र देता हूँ, इसका निरंतर जाप करते रहो। क्या है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में आके फंसना नहीं। बोला ठीक है याद हो गया जाओ। बोला क्या है, रिपीट करो। बोला शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में आके फंसना नहीं। बोला 100 बार बोलो, 100 बार बोला। बोला अभी तुमको कंठस्थ हो गया, कंठस्थ मतलब याद हो गया। तो बोला ठीक है जाओ। तो जाके उड़ने लगे आकाश के अंदर, बोलने लगे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोग में आके फंसना नहीं। और सब गए तो एक शिकारी उधर आया था, उसने जाल बिछाया था, दाना डाला, तो सब कबूतर देख के दाने फटाफट फटाफट आके बैठ गए उधर और आके चुगने लगे, और चुगते चुगते भी वो लोग का महामंत्र चालू है। तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में आके फंसना नहीं। और सारे के सारे लोग क्या हुआ, शिकारी आया, उसने जाल खींचा, सब फंस गए, शिकारी पीछे उसको रखा कंधे पे और लेके जाने लगा, उसके अंदर भी सब लोग बोल रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आके फंसना नहीं। तो ऐसे मंत्र का या इस तरह का समझने का क्या लाभ है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल, आ गया समझ में नहीं। जब तक रियलाइज नहीं हुआ है, आज सुबह हम भागवतम में चर्चा कर रहे थे रियलाइजेशन पे, कि कोई भी चीज हमको रियलाइज होनी चाहिए। जब तक रियलाइज नहीं हुआ तब तक खाली बोल बोल के उसका कोई फायदा नहीं है। तो रियलाइजेशन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान को जो कहा है वो प्योर नॉलेज कहा है, कि वो शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान इसलिए हम कहते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतिपूर्वा यम स्मरण पुंडरीकाक्ष सबाह्यभ्यंतर सूची, कि भगवान की अगर शरण लेंगे तो इस जो ये मोह है उससे बाहर आने में हमको। तो बेसिकली इसके अंदर दो टॉपिक है जिसके अंदर हम चर्चा करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा समय है हमारे पास। तो दो चीज़ें, इच्छा और द्वेष। तो हम देखेंगे कि ये दो चीज़ क्या है, किस तरह से जो एक जीव है वो इसके चंगुल में फंसता है, उसके जाल में फंसता है, जिस तरह से शिकारी की जाल में कबूतर लोग फंस गए। तो इस जाल के बारे में हम थोड़ा देखना चाहेंगे। तो डिज़ायर का क्या मतलब है, इच्छा मतलब क्या होता है, इच्छा का कोई डेफिनेशन देना चाहेगा आप लोगों में से कोई, इच्छा मतलब क्या, अगर मैं पूछूं किसी से इच्छा मतलब क्या, इच्छा का क्या
चाहिए,
जो करना चाहिए किसी वस्तु की तमन्ना, बहुत बराबर से, और क्या, कुछ पाने की चाहत। तो ये सब इच्छाएं हैं। एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में कहा कि 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा जो रोग है वो है कि अनकंट्रोल्ड डिजायर, कि लोगों की जो इच्छा है वो उस पर कंट्रोल नहीं है लोगों का, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो डिजायर मतलब होता है कि हमको कोई एक चीज की तमन्ना है, जैसे माता जी ने बताया प्राप्त करने की इच्छा है, या वह चीज जो हमारे पास नहीं है वो हमको चाहिए, उसकी हम इच्छा जताते हैं। तो हमेशा हम ये चीज चाहते हैं कि जो मेरे पास नहीं हो मेरे को मिल जाना चाहिए, और जो मेरे पास है अगर वो खो गई तो फिर हम लैमेंट करने लगते हैं। जैसे भगवद गीता में भी इसके ऊपर बहुत विस्तृत में भगवान ने कहा है। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो किसी देवता की पूजा करने लगा, देवता प्रसन्न हो गए, बोले वर मांग क्या चाहिए। तो बोला नहीं, उन्होंने कहा भगवान मेरे को कुछ दे दो। भगवान ने कहा ठीक है तेरे को मिलेगा, लेकिन जो तुमको दूंगा उसे डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं मेरे को तो दे। तो कार मांगा, दूसरे दिन सुबह उठ के देखा दो कार उधर, बंगला मांगा दो बंगला उधर। तो बड़ा एकदम मतलब उसको एनवी हो गया। तो इच्छा और एनवी का दोनों का एग्जाम्पल है कि इच्छा जताई उसने और इच्छा उसकी फुलफिल भी हुई, लेकिन उसको दूसरे के प्रति घृणा भी हुई, एनवियसनेस भी हो गया। तो फिर भगवान को उसको देवता को बोला कि एक काम करो मेरी एक आंख निकाल दो, मतलब उसकी दोनों आंख निकल जाएगी। तो बोला एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो है जो उसके पास नहीं है। तो ये इच्छा मेरी है कि मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो दूसरों के पास नहीं होना चाहिए, और ये इच्छा मेरी बड़ी बलवत होती है। और कभी हम ऐसा सोचते हैं कि भागता हूं मैं, लेकिन ऐसा भागू कि कोई दूर दूर तक मेरे को आजू बाजू में दिखाई नहीं देना चाहिए, अकेले ही भागू बस और मैं आगे निकल जाऊं सबसे। तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी होती है। तो ये जो इच्छा होती है ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बहुत ही विस्तृत में इसका वर्णन किए हैं। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम डीप में जाके उस चीज को एनालाइज करके बता सके, लेकिन वे कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि हम हमारे लिए जो करते हैं वो काम है, और भगवान के लिए अगर कोई इच्छा करते हैं तो वो प्रेम है। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। हम आगे अब देखेंगे किस तरह से है। और इच्छा जो है उसको और बड़े फिलोसोफर लोगों ने बताया है कि वो समुन्द्र में, अगर समुन्द्र के किनारे पे कोई खड़ा रहे और कोई सोचे कि समुन्द्र के अंदर कितने जीव है कितने प्राणी है, तो उसका वो अंदाजा नहीं लगा सकता। तो उतने सारे डिजायर हमारे होते हैं। कभी कभी सरफेस पे थोड़ी मछलियां दिखती है, लेकिन अंदर डीप बहुत सारी मछलियां होती है। तो किसी ने अगर कहा कि समझो अगर आपको ऐसा पता लगाना है कि तुम्हारी कितनी इच्छाएं हैं, जैसे अगर किसी से पूछा जाए, हालांकि मैं डायरेक्टली किसी से नहीं पूछूंगा, लेकिन किसी से कहे कि अच्छा तुम्हारे पास कितनी इच्छाएं बताओ, एक लिस्ट बना के बताओ, तो किसी ने कितनी इच्छा आएगी नंबर कोई बता सकता है? ऐसे 100, 200, 300, मिलियन, ट्रिलियन, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो एक फिलोसोफर ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको जॉट डाउन करना है आपकी इच्छा कितनी है, तो आपको क्या करना है, प्लीज टेक ए पेपर विच इज एज बिग एज स्काई, जो आकाश है उतना बड़ा एक पेपर ले लो, और एक कलम लो, एक पेन लो, जिसके अंदर उतनी सारी स्याही आए जितना बड़ा समुंदर है। यू टेक द पेन विच कैन अकोमोडेट द होल ओशन एज एन इंक, और लिखना शुरू करो इतना बड़ा पेपर पे। तो क्या होगा, वो पेपर खत्म हो जाएगा, स्याही खत्म हो जाएगी, इच्छा खत्म हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त ये है कि मतलब इतना लिखो, लिख लिख के पूरा आकाश के जितना खत्म हो जाएगा, और सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्याही खत्म हो जाएगी, बहुत सारे समुंदर सारे के सारे डाल दो उसके अंदर, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होगी। और इसीलिए चाणक्य पंडित बताते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशान विहीना जातम टुंडम वृद्धो यापि ग्रहित्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो क्या कहते हैं कि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, अंगम गलितम, उसका अंग अंग गलने लगता है, और पलितम मुंडम, उसके बाल झड़ जाते हैं, सब नेचुरल टकला बन जाता है। और दशान विहीना जातम टुंडम, ये आजकल IPL का जमाना है, लोग बहुत क्रिकेट में रुचि रखते हैं, तो हमारे पास 32 खिलाड़ी है, वो एक एक करके टपकने लगते हैं, एक एक करके आउट होते हैं, जो दांत है हमारे सब गिरने, दशान विहीता जातम टुंडम, सब गिर जाते हैं एक एक करके। और वृद्धो यापी ग्रहित्वा दंडम, और बुढ़े होते तो क्या होते हैं कि डंडा लेके चलना पड़ता है, इतना सब कुछ हो जाता है, तदपि, लेकिन फिर भी क्या होता है, न मुंचती, छूटता नहीं है क्या, आशा पिंडम, जो आशा का पिंड है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, अभी भी हमारे वो कुछ ना कुछ लगा रहता है। जैसे हमने वो मुन्ना भाई वाला ड्रामा किया था, अगर आपने देखा रहेगा तो, वो कैलाश बोलता आजा, नारद मुनि बोलते जैसे महाराज चंदू भाई की स्टोरी बताते वो सेम स्टोरी, तो महाराज जी बहुत बताया करते थे स्टोरी, चंदू भाई चलो, तो चंदू भाई बोलता नहीं अभी तो बहुत काम है मेरे को, शादी होनी है, बच्चा होना, ये होना, वो सब कुछ हो गया, मर गया, कुत्ता बन गया, सांप बन गया, फिर भी आने के लिए रेडी नहीं है। तब फिर नारद मुनि ने उनको मरवाया और लेके चले गए, ग्रेट सोल्स आर कंपैशनेट, तो लेके चले गए उसको। तो इस तरह से इच्छा जो है वो हमारी कभी भी खत्म नहीं होती एक्चुअली, और वो चलती रहती है। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि 84 लाख योनि जो है उसके अंदर भ्रमण करते रहते हैं और उस इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं कि अरे इस योनि में मेरी इच्छा की पूर्ति होगी, इस योनि में पूर्ति होगी। भारत में अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे गांव में अच्छा नहीं हो रहा है, चलो मैं बम्बई चला जाता हूँ, बम्बई आ गए, बम्बई में अच्छा नहीं हो रहा है, चलो दुबई आता हूँ, तो दुबई भी आ गए, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही, कनाडा चला जाऊँ, कनाडा में भी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, किधर भी नहीं होगी। तो 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं। तो नीति शास्त्र में बताते हैं कि हमारी 3 पत्नियां हैं, जैसे प्रभु जी ने लास्ट टाइम 4 पत्नियों का एग्जांपल बताया था, 4 वाइफ्स के बारे में बताया था, तो ऑब्वियसली अपना लेवल प्रभु जी जितना नहीं है तो हम एक लेवल नीचे आ गए। तो 3 नीति शास्त्र बताते हैं कि 3 वो है जो कौन कौन सी है, हंगर, थर्स्ट एंड डिजायर, ये 3 चीज के बारे में बताया कि भूख, प्यास और इच्छा। तो भूख मिट जाती है कई बार, प्यास मिट जाती है, लेकिन इच्छा मिटती नहीं है। इसके लिए इच्छा को सबसे चेस्ट वाइफ कहा है, जैसे प्रभु जी ने आत्मा के बारे में एग्जांपल दिया था, तो ये जो चेस्ट वाइफ है वो है उसको महासाध्वी कहा है नीति शास्त्र में। महासाध्वी मतलब वो बड़ा जबरदस्त हमको पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं है, बाकी छोड़ के चली जाएगी। तो ये जो इच्छा है ये इतनी जबरदस्त है हमको छोड़ती नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि इच्छा पैदा कैसे होती है। इच्छा अगर इतनी है तो इसका भी ग्राफिकल एग्जांपल भगवान ने दिया है, आप सभी लोग जानते हैं, हम सिर्फ क्विकली श्लोक बोलेंगे। वो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंस संगात तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विमृश स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात क्रमश। तो क्या बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंस, के सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हम लोग मनन करने लगते हैं कि ये चीज है, इसको मैं, ये मेरी चाह है, ये मेरे को चाहिए, आईफोन चाहिए मेरे को, या मेरे को और कुछ चाहिए, जो है उस चीज के ऊपर हम कंटेम्पलेट करते रहते हैं सेंस ऑब्जेक्ट को। और वो कंटेम्पलेशन करने पे क्या होता है कि उस चीज से हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है कि नहीं, जैसे मेरी इच्छा है दुबई जाऊंगा, अबू धाबी जाऊंगा, तो फिर बस सारा हम प्लानिंग चालू करेंगे, टिकट लेंगे और आ जाएंगे, अटैचमेंट हो जाता है हमको उस चीज से। और उस अटैचमेंट चीज से क्या होता है कि अटैचमेंट और कंटेम्पलेशन की वजह से हमारी जो डिजायर है वो बड़ी स्ट्रांग होती जाती है और फिर वो फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि डिजायर्स समटाइम्स आर नॉट फुलफिल्ड, मेनी टाइम्स इट इज नॉट फुलफिल्ड। इसीलिए लोग पिक्चर बनाते हैं, कभी खुशी कभी गम, हर बार खुशी नहीं मिलती है, नहीं तो पिक्चर आता था हमेशा खुशी मिल रही है, ऐसा नहीं है, कभी खुशी मिलेगी कभी गम मिलेगा, और ज्यादा टाइम गम ही मिलता है, खुशी बहुत कम मिलती है। तो फिर बाद में क्या आता है, लस्ट डेवलप्स, काम आता है, फिर काम सेटिस्फाई नहीं होता तो क्रोध आता है, इस तरह से सब चलते रहता है। तो भगवान बड़ा इसके बारे में बताते हैं, विस्तृत वर्णन करते हैं। लेकिन हम जो ये इच्छा है वो इच्छा किसके लिए करते हैं, व्हाट वी डिजायर फॉर, कोई बता सकता है हमारी इच्छा किसके लिए होती है जनरली?
अपने के लिए।
हाँ, लेकिन किस चीज के लिए, अपने लिए हम क्या करते हैं?
इंद्रिय
तृप्ति। बराबर कहा प्रभु जी ने, प्रभु रियलाइज सोल है, तो बता सकते हैं एक्चुअली, नहीं ऐसा नहीं कि, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी इच्छा एक्चुअली किस तरफ जा रही है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है हम उसके लिए, तो शास्त्रों में एक और बड़ा एग्जांपल दिया है सेंस ग्रेटिफिकेशन का, कि किस तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारा पतन कर सकता है। तो कहा है कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हत पंचाभिरेव पंच एक प्रमादि स कथम न हन्यते यह सेवते पंचाभिर एव स पंच। मतलब बताते हैं कि ये एक 5 एग्जाम्पल दिए हैं शास्त्रों के अंदर के जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की वजह से जिनका पतन होता है, और सिर्फ एक इंद्रिय से वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते और पतन हो जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है कुरंग, कुरंग मतलब होता है डियर, हिरन। तो हिरन का क्या होता है, अपने कान की वजह से वो खलास हो जाता है, कि शिकारी आता है बहुत अच्छा सारंगी बजाता है, बहुत अच्छा फ्लूट बजाता है, और वो फ्लूट की वजह से वो कान लगाते लगाते चल के आता है और इतना मदमस्त हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता, शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो फिर कुरंग मातंग, मातंग मतलब होता है हाथी, तो हाथी को कैसे पकड़ते है? किसी को पता है? गड्ढा खोद के, बराबर है। एक्चुअली हाथी के ऊपर एक 5 फुट का आदमी बैठ के महावत उसको पूरा कंट्रोल कर लेता है, इतना बड़ा हाथी होता है, लेकिन हाथी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बताते हैं इवन भगवदगीता में भी अर्जुन कहते हैं प्रमाथी बलवत दृढ़म, बलवत मतलब बहुत हाथी के जैसा है। वो कहते हैं कि मेरा मन जो है बड़ा चंचल है और बहुत बलवत है, तो चूहे के ऐसा बलवत नहीं है कि एक चूहा अगर पागल हो जाएगा तो क्या करेगा, लेकिन हाथी पागल हो जाएगा तो सारा उद्यान उखाड़ सकता है। तो हाथी बड़ा पावरफुल आदमी होता है, पावरफुल जानवर होता है, लेकिन उसको भी पकड़ लेते हैं। तो उसको पकड़ने का स्टाइल होता है गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास फूस बिछाते हैं, और ही एलिफेंट और शी एलिफेंट डिपेंड्स किसको पकड़ना है, वो वहां से उसको जाता है, उसको टच करके वो निकलता है रगड़ के, और उस रगड़न की वजह से वो हाथी इतना मदांत हो जाता है, वो पीछे पीछे भागता है, और उसको ट्रेन किया रहता है तो वो निकल जाती है और वो हाथी खड्डे में आके गिर जाता है और फिर उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो हाथी मरता है स्पर्श की वजह से, टच स्किन की वजह से। फिर पतंगा, पतंगा सुने, पतंगा नहीं भावरा नहीं, पतंगा परवाना, परवाना जिसको फिल्मों में परवाना कहते हैं। तो मौत, मौत इसको इंग्लिश में मौत कहते हैं। तो मौत क्या होता है, वो आग की तरफ बहुत आकर्षित होता है, अपनी आंखों की वजह से वो जाता है और सीधा उसके अंदर झुलस जाता है। तो हालांकि उसको मालूम रहता है कि ये बड़ी बड़ी आग है और मैं जाके उसको पकड़ूंगा, लेकिन फिर भी वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता है और चला जाता है और अपनी आग की वजह से वो फिनिश हो जाता है। फिर भृंग, भृंग मतलब भावरा, भृंग मतलब बम्बलबी। तो बम्बलबी जो होता है, भावरा आपने देखा ना, बड़ा पावरफुल होता है, वो एक पेड़ के अंदर छेद करके निकल सकता है बाहर, है ना, इट कैन पेनिट्रेट ट्री ट्रंक एंड इट कैन पास अवे एक्चुअली। लेकिन इतना जो भावरा वो क्या करता है कि उसका नाक जो होता है बड़ा शक्तिशाली होता है, तो वो जाता है और कमल के ऊपर जाके बैठ जाता है उसका नेक्टर लेने के लिए, उसका जूस पीने के लिए, और पेट और इतना मतलब पागल हो जाता है, जैसे कुछ जो पियकड़ लोग होते हैं वहीं से आते हैं एक्चुअली, बड़े पागल हो जाते हैं, उनको समझता नहीं क्या हो रहा है, तो पागल के जैसे पीते रहता है। शाम होती है कमल बंद हो जाता है, और कमल की पंखुड़ी जो है वो सबसे सॉफ्ट होती है। इसके लिए कई बार एग्जाम्पल में भी कमल के लिए हम यूज करते हैं, कर कमल और इस तरह से सब। तो वो कमल बंद होता है और भौरा इमीडिएटली एक्चुअली उसको तोड़ के बाहर निकल सकता है क्योंकि बहुत कोमल है, लेकिन वो पागल हो जाता है अपने टेस्ट की वजह से वो हनी लेने के लिए, और वो उसमें मर जाता है। सुबह जब कमल खुलता है तो भौरा मरा हुआ पाते हैं। और मीन, मीन मतलब होता है फिश, वो किस तरह से फिश को पकड़ा जाता है, वो डालते हैं छोटा सा कीड़ा लगा के डालते हैं, तो वो टंग, टंग की वजह से वो फिश ऊपर आती है, खाने जाती है और वो हुक में फंस जाती है। तो शास्त्र बताते हैं कि ये जो सारे प्राणी है, ये इनका एक सेंस जो है वह कंट्रोल में नहीं है, कि डियर का कान कंट्रोल में नहीं है, फिश का टंग कंट्रोल में नहीं है, हाथी का स्पर्श कंट्रोल में नहीं है, और इस तरह से कंट्रोल में नहीं है। तो एक एक सेंस जिसका कंट्रोल में नहीं है उसकी वजह से वो लोग फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तो शास्त्र आगे कहते हैं कि सोचो उस प्राणी के बारे में जिसकी 5 इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है साइमल्टेनियसली, उसका क्या हाल होगा। और वो कौन है प्राणी, मनुष्य, उसका कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, 5। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि जब हम पिक्चर देखने जाते हैं मूवी थिएटर में, तो मूवी थिएटर में क्या होता है, बहुत अच्छा सीन सीनरी आता है बहुत, इसके लिए कई बार वो क्या बोलते हैं पता नहीं, जो आर्ट डायरेक्टर होते हैं उनको बड़ा प्राइज मिलता है, इसमें पिक्चर ने बहुत अच्छा बताया तो मिल गया उसको प्राइस, तो बहुत अच्छा सीन सीनरी बताते हैं, इधर शूट किया उधर शूट किया, ऊटी में मैसूर में यहाँ पे वहाँ पे लंदन में पता नहीं कहाँ पे, वो दिखाते हैं। तो हमारा जो आंख है वो बड़ा आकर्षित होता है कि हाँ बहुत अच्छा देख रहे हैं। थिएटर में क्या है कि म्यूजिक चलता है, गाने बजते रहते हैं, तो हमारा कान भी म्यूजिक सुनता रहता है, बोलता है बहुत अच्छे मजा आ रहा है, ठीक है। फिर बैठने के लिए बहुत अच्छी कुर्सी होती है ना, तो स्पर्श हमारे को बड़ा मजा आता है कि अरे बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं। तो और क्या होता है, कुशन सीट होता है, और जो रूम में इतने सारे लोग थिएटर में बैठे रहते हैं तो थिएटर में क्या करते हैं, बहुत बार स्प्रे मारते रहते हैं रूम फ्रेशनर, ये तो इतने सारे लोग बैठेंगे पता नहीं क्या क्या हालत होगा ना किसका। तो ट्रेन के अंदर कोई स्प्रे मारने के लिए नहीं जाता ना, वहाँ पे भी एक अलग टाइप की सुगंध आती है पर वहाँ कोई नहीं जाता है, लेकिन थिएटर के अंदर बड़े रूम फ्रेशनर मारते हैं तो नाक भी आनंद लेता है। और क्या होता है कि बैठे बैठे हम लोग कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं, खाते वेफर खाते रहते हैं लेस, तो 5 इंद्रिया एक साथ अटैक, और क्या करते हैं सबसे पहले अंधेरा कर देते हैं, कम टू द डार्कनेस, वो तमसोमा ज्योतिर्गमय का पूरा उल्टा है कि हम लोग को अंधेरे में से उजाले में आना है, लेकिन थिएटर में तो सबसे पहले क्या करते हैं अंधेरा कर देते हैं कि अभी तुम आ गए हो माया के जाल में फंस गए हो बैठो इधर, और 5 इंद्रियों को एकदम ऐसा जबरदस्त वे में घसीटा जाता है, नाक कान नाक मुंह सब, कि हम लोग पूरे के पूरे धराशायी हो जाते हैं वहां पे, और पूरा टोटल सरेंडर भगवान को भी टोटल सरेंडर नहीं करते लेकिन माया देवी को फुल सरेंडर, कैसे पिक्चर। तो उनको सरेंडर का, शरणागति का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है कि पिक्चर देखने जाओ, पूरी तरह से सरेंडर हो गए हम लोग। तो किसी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था, मैंने नोट किया, दैट वी वर्क हार्ड टू अर्न मनी विच वी डोंट हैव, टू बाय थिंग्स विच वी डोंट नीड, एंड टू प्लीज दोज हुम वी डोंट लाइक। कि मतलब इसके लिए हम काम करें और हमारी इच्छाएं हैं। 20 साल पहले आई थिंक किसी की इच्छा नहीं थी कि हमारे पास सेल फोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। इच्छा थी किसी की 20 साल पहले? क्यों? था ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं था। ध्याय तो विषयान पुमसा, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए वो चीज ही नहीं था। सेलफोन था ही नहीं तो इच्छा थी नहीं, लेकिन फिर सेलफोन आया तो इच्छा जागृत हुई। और इसके लिए एडवर्टीजमेंट लोग, वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो इच्छा जागृत करवाते हैं। कभी भी आप देखो, रोटी का एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, चावल और दाल का एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट उस चीजों का होता है जिसकी हमको जरूरत नहीं है, फेयर एंड लवली। और मतलब इस तरह की चीजें हैं, लोग पता नहीं क्या क्या चीज का एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो थमाते जाते, बोले लेके जाओ। तो सेलफोन था ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। सेलफोन आ गया, अभी चाहिए। सेलफोन आ गया, काम क्या है? मोबाइल करना है, SMS लेना है, यही मेन है। लेकिन फिर भी उसके अंदर MP3 पिक्सल का हमको कैमरा चाहिए, मोबाइल चाहिए, FM रिकॉर्डर चाहिए, ये चाहिए। और फिर भी कुछ पूरा सेटिस्फाई नहीं होता तो हमको आईफोन चाहिए, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो आ जाओ, सब कुछ दे देते हैं। तो अरे बाप रे, मेरा नॉलेज इतना नहीं है। तो अभी उसकी भी इच्छा जागृत रहेगी कि वो चीज़ है। तो नहीं, पर जिसको नहीं पता बेचारे को, उसको तो नहीं हुई, इसलिए अगर जिसको नॉलेज है उसको होगी। तो बताते कि व्हेन वी आर इन्फेचुएटेड बाय, भैया कृष्णा के बारे में सीखना चाहिए। बायोडिस्क नहीं पता रहेगा तो भी चलेगा। सब लोग पूछ रहे हैं माता जी क्या होता है, क्या होता है, बता। कोई कुछ भक्त लोग पूछ रहे क्या होता है बायोडिस्क, अच्छा जागृत हो गए। नहीं देखो, देखो यही डिफरेंस है, कृष्ण के बारे में बोल बोल के आदमी बेचारा घायल हो जाएगा। माया इतना स्ट्रांग है, एक चीज बोला फटाक से वो चाहिए, बाकी कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ तारे माया झपटिया धरे, हरण करके माया पकड़ ले चले आ जाओ। इसलिए क्या होता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। भोग वांछा क्यों करता है? कृष्ण को भूल गए हम लोग, भोग वांछा कर रहे हैं। निकटस्थ तारे माया, माया भी बाजू में खड़ी है, देखती है कि आ जाओ, विकेट डाउन कर दो तुम्हारा, सीधा कैच कर देती है। निकटस्थ तारे माया झपटी आधारे। एनीवे, और इस तरह से जब एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, जैसे एक मैं कहीं सुन रहा था कि US के अंदर जब एडवर्टीजमेंट करते हैं सिगरेट का, और आई थिंक इंडिया में भी स्टेचुटरी वार्निंग आना बहुत जरूरी है, और पैकेट पे भी स्टेचुटरी वार्निंग लिखा रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, समथिंग लाइक दिस कुछ। तो अभी कई लोग पैकेट निकाल के सिगरेट साइड में रख लेते, तो सिगरेट पे भी लिखना चालू कर दिया अभी, कि कम से कम फूकते हुए बेचारा देखेगा। बट तो एक सिगरेट एडवर्टाइजिंग, एक कंपनी ने एडवर्टाइज की जिसमें एक बहुत सुंदर लड़का आया और पहला एक पफ मारा सिगरेट का, एकदम बहुत स्टाइल के अंदर, और कंपल्सरी था कमर्शियल एड बताने में कि भाई तुम्हारे को वो एड बतानी है सिगरेट स्टेचुटरी वार्निंग। तो स्टेचुटरी वार्निंग आई, फ्लैश होकर चली गई, और बाद में वापस उस लड़के को बताया, उसने दूसरा पफ मारा और बोला हु केयर्स। मतलब ठीक है, स्टेचुटरी वार्निंग हमने बताना था तो बता दिया, लेकिन हु केयर्स। और इस तरह से मतलब इतना उसको बताते हैं कि सिगरेट पी रहे हैं, और उसमें अगर कोई पूछता है कि व्हाई यू आर स्मोकिंग द सिगरेट, बिकॉज इट फील्स कूल मैन, तो अंदर आग जा रही है लेकिन फिर भी कूल, ये तो अचिंत्य भेदा भेद है, समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो इस तरह से डिजायर बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, और कई बार अगर नहीं स्मोक करोगे तो लगेगा पीयर प्रेशर में लोग आ जाएंगे, अरे ये क्या कर रहा है, ये स्मोक नहीं कर रहा है। एक बार मतलब ऐसे है कि जो अच्छी चीज करनी है अगर वो कोई करता है तो कई बार लोगों को बहुत शर्म आती है। कोई लोग बताते नहीं ऑफिस में कि मैं डिवोटी हूँ या डिवोटी बनने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं, बहुत शर्म आएगी। लेकिन अगर दूसरा कोई गंदा काम करके आया तो पहले बताएगा कि मैंने ये कर लिया करके, तो उल्टा हो गया कि जो चीज कलयुग में वही होने वाला है कि जो चीज करनी चाहिए, जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं, और जो नहीं बताना चाहिए वही बता रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। यानी भी हमारे पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है वो कवर करना चाहेंगे, वो है इच्छा हो गया और द्वेष। द्वेष मतलब एनवी, हमारे एक सुदामा प्रभु है ब्रह्मचारी राधा गोपीनाथ मंदिर में, बड़ा बड़े जॉली है, जिसके एक उदाहरण इन्होंने सुबह प्रस्तुत किया था, आपने आपने प्रभु जी, जो मन की करे वो मंकी, ये उन्होंने उत्पादन किया था उसका। तो कई बार वो इस तरह के बताते रहते, तो उन्होंने कहा एनवी मतलब क्या, एन वी नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इफ यू आर एनवियस यू विल नॉट गेट एंट्री इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वहां पे एनवी चाहिए ही नहीं, मिलता ही, तो एनवी इज अ डेडली अनर्था इन द हार्ट। तो ये जो मैं एग्जांपल आपको बता दिया कि मेरी एक आंख निकाल दो, दोनों चली जाएगी, तो इतनी घृणा हो गई उससे दो दो चीज देख देख के सहन नहीं हुआ। और भागवतम में भी इसका एक उदाहरण है, जो समय रहा तो हम बताएंगे, नहीं तो बताते हैं कि जो इच्छा है हमारी वो अगर फुलफिल नहीं होती है तो उससे क्या होता है, हमको क्रोध आता है और हम दूसरों के प्रति घृणा करते हैं कि अगर उसके पास कोई ज्यादा है और मेरे पास वो चीज नहीं है। तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल सोचो कि कॉलेज के अंदर जैसे जब पढ़ते हैं लड़के लोग, तो कोई कई बार जो कोई बड़े घर की कोई बेटी रहती है उसको पटाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि चलो उसको पटाएंगे कुछ। तो एक लड़का है जो फटीचर है, फटीचर नंबर वन, कुछ है नहीं उसके पास, लेकिन कॉलेज के अंदर दाखिला मिल गया, हीरो बन के घूम रहा है, और उसकी इच्छा होती है कि चलो ये कोई लड़की उसको मैं पटाऊंगा। तो बहुत टाइम से ध्यायते विषयान पुंसा कंटेम्पलेट करता रहता है, अलग अलग तरीके ढूंढता है, जैसे हमने फिल्मों में भी देखा रहेगा कि किस तरह से, तो बहुत उसके पीछे होमवर्क चलता है, बहुत बड़ा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इधर से जाऊंगा इधर से आऊंगा, ये करूंगा ये मोटरसाइकिल, कुछ नहीं करके तो मैं करूंगा, तो बहुत आकर्षित करने की कोशिश करता है, तो ऐसा रहता है। और फिर बाद में एक वो दिन आ जाता है जिस दिन वो सोचता है कि अब जाके मैं इसको क्या करूंगा, प्रपोज करूंगा। कॉलेज में बहुत चलता रहता है ये सब, तो इसको जाके मैं प्रपोज करूंगा। तो उस दिन वो दिन आ जाता है, वो प्रपोज करने के लिए जाता है, और जैसे ही प्रपोज करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, क्या देखता है कि एक बड़ा अमीर खानदान का लड़का वो आता है, उस लड़की के हाथ में हाथ डाल के उसको ले जाता है, और वो बेचारा देखता रह जाता है। तो सोचो अब उस आदमी का क्या हाल हुआ रहेगा, उसको उस व्यक्ति के प्रति कितनी घृणा होगी कि भाई मैं इतने टाइम से इस ऑब्जेक्ट को पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये मेरे को मिला नहीं। और एक्चुअली क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को उस लड़के को पाना था, जैसे शास्त्रों में नीति शास्त्रों में एक और चीज आती है कि एक ही ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है चल रहा है, और उसको तीन चार जन अलग अलग तरह से देखते हैं। क्या देखते हैं कि समझो जैसे कोई एक लड़की जा रही है, तो अगर कुत्ता उसको देखेगा तो क्या सोचेगा कि अरे मेरा मांस जा रहा है मैं कभी इसको खाऊं। योगी देखेगा तो बोलेगा कोई आत्मा जा रही है, और कामी जो होगा वो सोचेगा कि ये मेरा कोई भोग करने की वस्तु है। तो उस श्लोक में भूल रहा हूँ, योगी भी कामी भी सभी, इस तरह से कुछ कुछ आता है। तो उसको इतना मतलब उस व्यक्ति के प्रति घृणा होगी कि यार मैं इतने टाइम से कॉन्टेम्पलेट कर रहा था और तू लेके चला गया, तो इतनी घृणा से वो भर जाएगा कि कुछ भी करने के ऊपर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी भी जो इच्छा है वो कई बार फुलफिल नहीं होती है। तो हम लोग कौन है इस एग्जाम्पल में, हम लोग कौन है, जो एग्जाम्पल दिया इसमें हम लोग कौन है, वो फटीचर है हम लोग, इसके पास कुछ नहीं है, भटक रहे हैं इधर उधर भटकते हुए। और वो लड़की कौन है, माया, माया देवी। और वो अमीर लड़का कौन है बताओ, कौन है वो लड़का, अमीर लड़का भगवान श्री कृष्ण। वो आके क्यों, कैसे, और बताता हूँ कि हम माया को भोगने का बड़ा प्रयास करते हैं कि माया को मैं पकड़ूंगा उसका उपभोग करने की कोशिश करूंगा, लेकिन भगवान आके क्या कहते हैं, मम माया दुरत्या, और ले जाते हैं। ये माया देवी जो है, देवी हैश्य गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेतांतरं थिते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान उसको साइड में ले जाते, बोले चल ये तो माया तो उनकी शक्ति है ना, हम उनकी शक्ति का क्या उपभोग करेंगे, कितना कोशिश करेंगे। तो बहुत प्रयास करते हैं और वो फुलफिल नहीं होती है, तो अनफुलफिल काम जो होता है डिजायर, उसकी वजह से हमको बहुत घृणा पैदा होती है और हम लोग बहुत घृणित हो जाते हैं, और घृणा के अंदर फिर हम देखते नहीं आगे पीछे क्या होता है, क्या करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो जो फिलोसॉफी है, जैसे प्रभुपाद जी भगवद्गीता के ऑलमोस्ट हर पेज के ऊपर लिखते हैं टू लॉर्ड इट ओवर टू मटेरियल नेचर, कि हम जो है वो स्वामी बनना चाहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड का मालिक मैं ही हूँ, ये सारा का सारा ब्रह्मांड मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, और अगर घूम रहा नहीं है तो घूमना चाहिए, ये इच्छा है मेरी कि बस ऐसा घूमना चाहिए, और यू नो सारी चीज इस तरह पर ऐसा चलता नहीं है। इसके लिए भागवतम के अंदर एक क्लासिक एग्जाम्पल है, किसका? ध्रुव महाराज और सुरुचि का। ध्रुव महाराज महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठे थे, और उनकी माँ थी सुनीति, और उत्तानपाद की दूसरी पत्नी थी सुरुचि। तो सुरुचि आके झटक के उनको नीचे गिरा दिया, बोला अरे तुम कैसे बैठे हो उसके पैरों पे। हालांकि ध्रुव महाराज जो थे वो बड़े थे, दूसरे जो उनका जो उसका क्या नाम था, उत्तम 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 से, और काफी मतलब ऐसे तो योग्य थे, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने आके पटक दिया उसको नीचे और बोला के जाओ, अगर तुमको इस सिंहासन पर बैठना है, राजा की गोद में बैठना है, तो तुमको मेरी गोद में से जन्म लेना होगा। मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम सिंहासन पर, ये कि मेरी गोद से, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हो तुम, इसके लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे में कुछ भी योग्यता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हर कोई चीज जो मेरी है वो उत्तम है, बाकी जो मेरी नहीं है वो उत्तम नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कई एग्जाम्पल उसके दिए जा सकते हैं कि मैं जिस कंट्री में रहता हूँ, जिस देश में रहता हूँ, वो महान है, और चाहे वो देश महान है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ इसलिए अमेरिका महान है, मैं लंदन में रहता हूँ इसलिए लंदन महान है, और मैं भारत में रहता हूँ तो भारत महान है, पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान महान है। मतलब क्या महान है वो इररिलेवेंट है, लेकिन क्योंकि मैं उसमें रहता हूँ इसलिए वो महान है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है इसलिए सबसे अच्छा है, दूसरे का बच्चा है नहीं, मेरा बच्चा है इसलिए सबसे बुरा भी रहेगा फिर भी अच्छा है। तो हर वो चीज जो मेरी है, जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वो अच्छी है, बाकी सब बुरी है। तो ये इच्छा है, और ये सबसे बड़ी हमारी बीमारी है कि हम इस बीमारी से बड़े ग्रसित हो गए हैं कि हर चीज, और हम वो सोचते हैं कि सब कुछ मेरे आजू बाजू में ही घूमना चाहिए या घूम रहा है, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड मी। तो इस तरह से हमारी इच्छा हो जाती है, और जब ये इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो हम हमारे बहुत एनवी आते हैं। जैसे कई बार हम लोग आते हैं, या दो लड़के लोग एग्जाम दे रहे हैं, एक का नंबर बहुत ज्यादा आ जाता है, दूसरे का नहीं आता, तो तुरंत घृणा आने लगती है, अरे ऐसा इसका भला नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका भला नहीं होने दूंगा, चाहे जैसे वो लड़का लेके चला गया, दूसरा क्या सोचता है, तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती है। तो ऐसे हम सोचते हैं कि नहीं, बस अगर मेरा नहीं है तो मैं किसी और को भी नहीं होने दूंगा, उसका भी भला नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ बाधा कुछ अड़चन मैं जरूर डालूंगा। तो इस तरह की प्रवृत्ति हमारे पास आती है, तो हम क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वो हार्ड हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है, हार्ड हार्टेड हम लोग बन जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है, कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है वो समझ में नहीं आता है। कि जैसे ध्रुव महाराज उत्तानपाद के योग्य पुत्र थे, लेकिन सुरुचि की बुद्धि फिर गई, उसने नीचे पटक दिया उसको और कहा जा जंगल में जा और मेरी गोद से पहले जन्म ले, और नहीं तो जा और भगवान से प्रार्थना कर, तब शायद कहीं तुमको मिलेगा। तो सुरुचि की ये भी इच्छा नहीं थी हकीकत में पूछा जाए कि दिल के अंदर से है कि ध्रुव जाके कोई प्रार्थना करे भगवान से, वो खाली ऐसा बोलने के लिए बोल दिया उसने। फिर ध्रुव महाराज गए रोते रोते अपने माँ के पास, उन्होंने उसको आदेश दिया जाने का, फिर नारद मुनि से मिले और फिर उनको स्टोरी सब मालूम है। तो इस तरह का जो व्यवहार सुरुचि ने किया वो घृणा, मतलब बड़ी घृणा थी उससे कि ये मेरी साउथ का लड़का है नो, ये बिल्कुल खराब है। तो कई बार ये घृणा के हम लोग भी वो हो जाते हैं, हम हर चीज से घृणा करने लगते हैं कई बार। मतलब जिस तरह के लोग होते हैं कि अगर भगवान में भी घृणा पैदा करना शुरू करते हैं कि तुम इस भगवान की पूजा करते हो ये अच्छा नहीं है, मैं इसकी पूजा करता हूँ ये अच्छा है, ये मेरा भाई है ये अच्छा है, ये मेरा गुरु है ये अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम डिवोटी अच्छे नहीं हो, तुम उस तरह के हो, मैं इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत बड़ा हूँ, तुम लोग सब इस तरह के। तो इस तरह की भावना हमारे में धीरे 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 आने लगती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। इसका एक उदाहरण है कि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया, बोला दुर्योधन आओ इधर, बोला जाओ कोई एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ। तो दुर्योधन भाई साहब गए और ढूंढ के वापस अकेले आ गए, द्रोणाचार्य बोला अरे किसको लेके नहीं आया क्या, तो बोला कोई अच्छा मिला ही नहीं मेरे को। तो द्रोणाचार्य अच्छा ठीक है चल बैठ जाओ बैठ जाओ। युधिष्ठिर को बुलाया, बोला आ जाओ युधिष्ठिर जाओ किसी एक बुरे व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ। युधिष्ठिर घूम घूम के आए अकेले आ गए, अकेले कैसे आया तू भी, दुर्योधन की तरफ तो मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, कहां से लेके आऊं। तो ये कि कई लोग जो होते हैं, जैसे दुर्योधन एक्चुअली वो जानता था, और इसलिए वो कहता भी है दैट वो होता है जानामि अहम धर्मा नच माम प्रवृत्ति, बोलता कि मैं धर्म क्या है वो जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति वैसी नहीं है, और जानामि अहम अधर्मा नच माम निवृत्ति, कि मैं अधर्म क्या वो भी जानता हूँ लेकिन मैं रह नहीं सकता। इतना घोर घृणा थी उसको पांडवों के प्रति कि किसी भी कीमत पर पांडवों को वो कुछ भी नहीं देना चाहता था। जब भगवान स्वयं आ गए शांति दूत बन के और कहने लगे कि अच्छा कम से कम 5 गांव दे दे, तो बोला 5 गांव को छोड़ो, सुई की नोक के जितनी जगह भी मैं उनको नहीं दूंगा, और जबकि वो उनका ही था। तो इतनी घृणा हो जाती है कि हम सच क्या है, खराब क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उसका हमारे को कुछ होश ही नहीं रहता है। तो इस तरह से वो हमेशा बस दुर्योधन को मारना ही चाहता था। तो इसके लिए भगवद गीता के अंदर भी भगवान एक श्लोक कहते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर असुरा न च शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, दोज हु आर डेमोनिक डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, नेदर क्लीनलीनेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर नॉट ट्रूथ इन फाउंड इन देम। तो हमको होश नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सही क्या है गलत क्या है, उसका कोई चीज का हमको कोई होश नहीं रहता है। और ये जो घृणा जो है ये चक्रवात की तरह होती है, भ्रम भावरा क्या बोलते हैं उसको, भ्रमर की तरह होती है कि एक बार किसी को अंदर बिठा लेती है तो उसको बहुत दूर तक ले जाती है और एकदम नीचे जाके पटक देती है। तो इसके लिए कई बार क्या होता है कि हम अच्छा व्यक्ति भी होता है या अच्छा डिवोटी भी होता है उसके बारे में भी हम लोग कई बार अच्छा नहीं सोच सकते। सोचो ये मतलब बड़ा ग्रॉस है, और कि हम सोचते हैं ठीक है अच्छा लेक्चर देता तो क्या हुआ, हाँ ठीक है अच्छा गाता है तो क्या है, ठीक है अच्छा कुकिंग करता तो क्या, ये माता जी अच्छा प्रसाद बना लेती तो क्या है, इसमें क्या है, मैं भी कुछ हूँ, ठीक है हाँ ये ठीक है अच्छा सेवा करके चला जाता है ठीक है, बाकी तो ज्ञान तो है ही नहीं उसमें। मतलब हर चीज के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ बुरा ढूंढने का सोचते हैं। पूरी दीवार सफेद है उसके ऊपर एक काला धब्बा है उधर ही हमारी आंख जाती है। पूरा लेक्चर अभी आप देखो कई बार सुनने के बाद हम बोलेंगे तो कितना अच्छा पॉइंट बताया उस पर डिस्कशन नहीं होता है, ये शायद गलत बोल दिया प्रभु जी ने, ये बोलना नहीं चाहिए था। मतलब ये ऐसा नहीं है, ऐसा होता है क्या, तुमको ऐसा लगता है क्या, फिर दूसरा सोचते हाँ मेरे को भी ऐसे लगता है यार, और फिर उधर गॉसिपिंग चालू हो जाता है हमारा यहाँ, और तभी हम लोग वापिस उसके अंदर फंस जाते हैं। तो माया बरोबर, इसके लिए कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तर झपटिया धर, माया बाजू में खड़ी हो ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हाथ में बीड बैग उठा लिया तो माया पे विजय प्राप्त कर लिया। गौरांग प्रभु जब आए थे बता रहे थे कि हाथ में जब से बीड बैग आया तो हमको लगता है कि बस अभी तो जीत गए हम लोग, और फिर माया ऐसा बॉलिंग करती है दे धनाधन धनाधन लहूलुहान हो जाते हैं हम लोग, हमको समझता नहीं है क्या हो रहा है। तो इसके लिए हमको समझना चाहिए कि अगर बीड बैग हाथ में लिया मतलब माया के साथ हमारा लड़ाई चालू हो गया, तो उस लड़ाई को हमको जीतना है। और माया इतना सारा चीज हमको देगी कि अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी रहेगा उसके अंदर भी हमको खराबी दिखाई देगा, अच्छा दिखेगा ही नहीं, हमारी आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा पड़ जाएगा। तो इसके लिए बताते हैं कि हमको अच्छा ही देखने की कोशिश करनी चाहिए, हमको युधिष्ठिर महाराज की जो क्वालिटी है वो लेने की कोशिश करनी चाहिए। मैं मानता हूँ ये बहुत आसान है कहना इधर बैठ के, मैं व्यासासन पर बैठ के बोलूंगा बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है, पर एटलीस्ट कम से कम ये चीज समझना चाहिए थ्योरेटिकली कि हाँ ऐसा है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक पता कैसे लगाएंगे। और जैसे सचिन तेंदुलकर मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, अगर आके बैठा है यहाँ पे तो भले लेक्चर मैं दे रहा हूँ सारे लोग उसको देखेंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास शक्ति है, पावर है, लोगों को ज्ञान है कि वो कौन है, सचिन तेंदुलकर कौन है। तो हालांकि मेन स्पीकर आके लेक्चर दे रहा है लेकिन सब सचिन तेंदुलकर को देख रहे हैं और उसको देख के खुश हो रहे हैं, और उनके आ रहे हैं अच्छा अभी स्माइल दे रहा है, नाउ ही स्माइलिंग, अच्छा नाउ यू नो ही इज नोडिंग हिज हेड, नाउ ही स्लीपिंग, ऐसा सब ध्यान रहेगा हमारा क्योंकि उसके बारे में जानते हैं। तो जिस चीज के बारे में अगर हम जानेंगे नहीं उस चीज पे अमल कैसे करेंगे, भगवान कौन है अगर ये पता ही नहीं है तो उसकी वर्शिप कैसे करेंगे। तो वर्शिप करने के लिए कम से कम पहले ये पता लगाना चाहिए कि भगवान कौन है, हमको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। जब भगवान की शक्तियों का ज्ञान होगा तब धीरे धीरे जाके कहीं भगवान से हम प्रेम करेंगे और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, नहीं तो हमको अभी उनके प्रति कोई आकर्षण है ही नहीं। आकर्षति इति कृष्ण नाम है जो सर्वाकर्षक है, लेकिन हमको कोई आकर्षण ही पैदा नहीं होता है उनके प्रति। कई बार आप लोग को होता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल हमारे को बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं आता है। अच्छी चीज़ कहने के लिए बहुत बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन दूसरी चीज़ कहने के लिए आसानी से, मतलब ऐसा किसी प्रभु से पूछा अच्छा चलो इसका डेफिनेशन बताओ, लास्ट टाइम क्या श्लोक का बताओ, तो सब लोग ऐसा नीचे मुंह कर लेंगे, इधर उधर देखेंगे। लेकिन अगर ना किसी का कुछ गॉसिपिंग चल रहा है तो तुरंत जंप मार के पहले बताएंगे कि ये बताना है मेरे को, मेरी भी सुनो, मेरी आवाज सुनो। यानी ये है कि जिस तरह से हम लोग, तो एक बार परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज बता रहे थे कि ये जो एनवी का नेचर क्या है, कि किस तरह से ये डेवलप होता है। और जैसे वो एग्जांपल दिए उन्होंने, वो कहे कि ए गुड कुक डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद अ गुड सिंगर। ए गुड सिंगर डज नॉट हैव ए प्रॉब्लम विद बुक डिस्ट्रीब्यूटर। बुक डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद द प्रीचर। मतलब एक जो खाना बना रहा है, प्रसादम भोग बना रहा है भगवान का, उसको बुक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मैं अपना प्रसाद बना रहा हूँ इधर। एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रीचर से कोई लेना देना है, ठीक है तुम प्रीच करो, मैं तो जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। प्रीचर को सिंगर के साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है तुम गा रहे गाओ, तुम गाओ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ। सिंगर को कुक के साथ कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन लफड़ा कभी होता है, प्रॉब्लम कभी शुरू होता है
दो सिंगर
नहीं, हाँ जब हमारा फील्ड ऑफ एक्टिविटी सेम होता है तभी प्रॉब्लम शुरू होता है ना। जैसे मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और कोई दूसरा आ गया मेरे से भी अच्छा गाने वाला, तो भय पैदा होता है और तभी एनवी का जो बीज है वो बीजारोपण होता है वहां पे। अरे मेरे से अच्छा कैसे गा लिया, ये गालेगा तो मेरा क्या होगा। भोगी रोग भयम बल्ले चुति भयम वृत्ते निपालात भयम माने जान्य भयम। तो इस तरह की जो है वो भय पैदा होते हैं कि कोई अच्छा लेक्चर दे रहा है, कोई दूसरा अच्छा लेक्चर देने वाला आ गया तो भय लगता है यार कुछ हो जाएगा करके। एक अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, कोई दूसरा आ गया और अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो भय लगता है, अरे ये इतना डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसका नाम आ जाएगा आगे, यार मेरा क्या होगा। तो इस तरह से जो चीजें, इसलिए अगर फील्ड ऑफ एक्टिविटी, यार हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा फील्ड एक ही है, हम लोग भक्ति करने के लिए आए, और भक्ति करते करते दूसरे भक्त के बारे में अगर ऐसा सोचेंगे कि यार वो बहुत आगे जा रहा है भक्ति के अंदर, भगवान तुमने अच्छा नहीं किया, ये गलत नहीं किया, तुमने बरोबर नोट नहीं किया मैं कौन सी तारीख को ज्वाइन किया था इस्कॉन, मैंने 94 में ज्वाइन किया था, ये 2004 में आके आगे कैसे बढ़ गया, ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, तुम बरोबर हिसाब किताब नहीं रख रहे। तो नहीं, इस तरह की हमारी जो होती है वो इच्छा होती है। लेकिन गोलोक वृंदावन में क्या है, ये नहीं चलता, एनवी नहीं चलता। गोलोक वृंदावन मतलब एनवी से फ्री, वहां पे कोई किसी तरह का एनवी नहीं है। तो अगर हमको गोलोक वृंदावन को पाना है तो क्या करना पड़ेगा कि एनवी जो है उससे दूर रहना पड़ेगा। तो जैसे बताते हैं कि एक बार एक होटल के बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम आ जाओ। तो एक भाई साहब बड़ा खुश हो गया, बोला रहे तो वेलकम कर रहे हैं हमारे को, चलो हम वेलकम के ले जाते हैं। वो अंदर चला गया, खाने बैठ गया, तो बाद में उसको बोला चार्ज भी देना पड़ेगा। तो बोला तुमने तो वेलकम लिखा है। बोला वेलकम तो ठीक है लेकिन चार्ज भी देना पड़ता है। तो गोलोक वृंदावन के अंदर भगवान ने बोर्ड लगाया, वेलकम आ जाओ, भक्ति जितै त्वम ना आ जाओ मेरे अंदर, है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तां शरणम। लेकिन उसके लिए प्राइस देना पड़ेगा, और वो प्राइस क्या है, यही सब चीज फॉलो करनी पड़ेगी कि किस तरह से भक्ति के जो प्रिंसिपल है उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे, फॉलो करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, चार नियमों का पालन करने की कोशिश करेंगे और सब कुछ बराबर से चलेगा, तब जाके शायद हो सकता है कि हमको गोलोक वृंदावन में जाने के लिए एंट्री मिल जाए। तो जाना है गोलोक धाम और टिकट है हरिनाम। तो हरिनाम का हम आश्रय लेंगे और बाकी जो नियम है उसको बराबर से फॉलो करेंगे, तब जाके कहीं ना वो योग्यता आ सकती है। और वो भी ऐसे आती नहीं है, भगवान कंपल्सन में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उस तरह का प्रयास करेंगे तो काले न अति दीर्घे न भगवान इसते हृदय, कि भगवान तुरंत, जिस तरह से अगर हम भगवान का शरण लेंगे उस तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते को भजामि हम। तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि हाँ अभी बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, लेकिन क्या करूँ, कम से कम मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। और प्रयास करते करते कभी नीचे गिर भी जाएंगे तो भगवान कहते हैं डर मत, एक्चुअली भगवान कृष्णा। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे बहुत सिर्फ दो मिनट में, कि एक दो भक्तों के बीच में चर्चा चल रही थी कि कौन सबसे कंपैशनेट है, तो उसने कहा लॉर्ड रामचंद्र। तो बोले अरे लॉर्ड रामचंद्र कैसे, तो बोले लॉर्ड रामचंद्र ने सोचो बंदरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, कि कई बंदर जब लंका में जब ब्रिज बना रहे थे और जब फाइटिंग कर रहे थे ब्रिज बनाने के बाद, तो कई बंदरों के हाथ कटे हुए थे, पैर कटे हुए थे, ये थे वो थे सब कुछ था। तो लेकिन जब राम जाते थे उनको मलम पट्टी करते थे, तो एक बंदर खड़ा होकर बोला कि आज मैं कल तो बस रावण को मैं मार दूंगा और उसके दोनों पैर कटे हुए। तो भगवान ने सोचा अरे बाप रे क्या हो रहा है, मेरी वजह से इतने लोगों को दुख हो रहा है, मैं क्या करूं। तो भगवान ने बहुत मर्सी दिया उनको एक्चुअली, तो बोले इतने कंपैशनेट है, लेकिन दूसरों पे इतना कंपैशन करते हैं तो बाद में वो ड्यूटी बुला लेंगे, लेकिन कुछ और आगे बताओ। तो बोले कि नहीं कृष्ण जो है वो उनसे ज्यादा कंपैशनेट है। बोले कैसे, तो बोले देखो कृष्ण तो है वो ये नहीं देखते अच्छा किया कि खराब किया। जैसे राम क्या है कि सीता माता को उन्होंने बाहर निकाल दिया कि वो धर्म परायण है, बस कि जो धर्म के साथ जो हो रहा है मैं वही काम करूंगा, धर्म के विपरीत कोई काम नहीं करूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो उधर एक लाइन ड्रॉ करके रखते। लेकिन कृष्ण क्या है, वो प्रेम परायण है, वो धर्म परायण नहीं है। कोई भी उनका भक्त है उसको पीछे से एंट्री में ले लेते हैं। तो जैसे बताते कि भाई इसने कुछ तो काम किया है, तो भगवान कहते हैं अब अपित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, कि मेरा कोई अगर एकदम गिरा हुआ व्यक्ति भी अगर भगवान मेरा नाम ले रहा है तो एंट्री है उसको, आ जाओ। तो बोला लेकिन और आगे बताओ। तो बोला नहीं, चैतन्य महाप्रभु है वो सबसे ज्यादा उदार है। तो बोले कैसे? बोले देखो जब कृष्ण मथुरा में गए थे तो उन्होंने धोबी से कपड़े मांगे, उसने दिया नहीं, तो भगवान ने क्या किया, उसका गला उड़ा दिया। तो बोला कि वो अपने भक्तों के साथ कुछ भी करते हैं, लेकिन जो दूसरे अभक्त है उनको बड़ी कड़ी सजा देते हैं, इस तरह से वो भेदभाव नहीं करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो सबको छोड़ देते हैं। बोले आ जाओ, उन्होंने जो भी है सबको माफ कर देते हैं, जगाई मदाई को भी माफ कर दिया उन्होंने। नहीं लेकिन नहीं, उन्होंने बताया सबको माफ कर दिया है, लेकिन जो भक्तों के प्रति अपराध करता है उनको माफ नहीं करते, उनके खुद के प्रति अपराध करेगा तो भी माफ कर देंगे। बोलेंगे ठीक है, कपड़े नहीं दिए कोई बात नहीं, चलो। जैसे वरांग प्रभु आए थे तो वो बता रहे थे कि कुछ कुछ जो होते हैं वो राम के भाव में होते, कुछ कृष्ण भाव में होते और कुछ चैतन्य महाप्रभु के भाव में होते। तो किसी भक्त ने गलती की है तो राम वाला क्या बोला, इसने गलती की है इसको सजा दो, धर्म ये धर्म का उल्लंघन किया इसने। कृष्ण लगा ठीक है यार, अपना ही ड्यूटी, आने दे साइड में, आने दे, चल इधर आ जा, माफ कर दे, चलो कोई बात नहीं। और जो चैतन्य महाप्रभु के मूड में रहेगा क्या, अरे इसको टेम्पल प्रेसिडेंट ही बना दो इसको, कोई बात नहीं, इतना उदार है। लेकिन भक्त के प्रति अपराध करेंगे तो सुदर्शन लेके आ जाएंगे, जैसे जगाई मदाई के ऊपर आ गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा करते हैं तो और उदार कौन है? बोले उदार उनके भक्त है नित्यानंद प्रभु, और दूसरे के जो उनको मर अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, और इसमें मार खे प्रेम दे दयाल तो नहीं है, तो कौन है? एकम मार खाने के बाद भी इतना दया दे रहे हैं, इतने तो भगवान के जो भक्त है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो सबसे ज्यादा उदार है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि भक्तों के साथ किस तरह से हमको व्यवहार करना चाहिए, और किस तरह हरिनाम का आश्रय भक्तों के संग में रह के अगर लेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, जो जनरली मैं करता हूँ, तो माफी चाहता हूँ आप लोगों से। तो हम यहीं पे विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। मंडे सोमवार के दिन एकादशी का व्रत है, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आप एकादशी का व्रत करें। और बुधवार के दिन श्री नरसिंह चतुर्दशी है, नरसिंह चतुर्दशी का जो त्योहार महोत्सव है वो मनाया जाएगा, और उस दिन हमको शाम तक भी व्रत रखना है, फास्ट करना है, फास्टिंग टिल डस्क। डस्क मतलब क्या होता है गुरु जी, कहाँ तक? 6 बजे तक हमको फास्ट रखना है। और उसके बाद ऐसा सुबह अनाउंसमेंट किया गया था कि प्रसाद भी जो हमको लेना वो एकादशी वाला लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम नॉन एकादशी का भी लेते थे पहले, तो एकादशी प्रसाद मतलब जब फास्ट तोड़ेंगे तो एकादशी प्रसाद ग्रहण करना है। और उस दिन स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी के घर पे बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग 15th फ्लोर पे ये महोत्सव मनाया जाएगा, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया आप वहाँ पे भी आइए। और अगर बोलें 7:30 समय पे आएंगे तो अच्छी बात है, ताकि समय पे प्रोग्राम शुरू हो सकता है। और अगर मैंने बात में और बड़े उत्साह में अगर कुछ गलत कह दिया है तो कृपया मुझे माफ़ करना, मेरा कोई इंटेंशन कहीं कुछ कहने का नहीं था, लेकिन जो भगवान बुलाते हैं आते गया, तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। अगर किसी का कुछ प्रश्न है, पता नहीं हमारे पास समय है कि नहीं, तो क्योंकि टाइम हो चुका है तो हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, गिरवादार, यू कैन स्टॉप।